श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज 22 फरवरी 1988 रात्रि 8 बजे धामन गांव।
प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रय गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं दाय देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बंसी विभूषितकरान् नवनीतिलाभात् पीताम्बराधनुरबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ति गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णकमले नारायण 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 नारायण।
एक बात आपसे बतावें, जैसे मैंने सुबह कहा कि सत्संग है एक प्रकाश देने वाला। सत्संग करने से आदमी को प्रकाश मिलता है। जैसे अंधेरे में कुछ दिखता नहीं और प्रकाश होने पर सब चीजें दिखने लग जाती है, ऐसे सत्संग के द्वारा बहुत ज्ञान होता है। वो कोई नई बात नहीं है, वो है होते हुए भी दिखती नहीं। अंधेरे में कोई चीजों का अभाव थोड़ा ही हो जाता है, परंतु प्रकाश में चीजें दिखने लगती है, अंधेरे में दिखती नहीं। ऐसे सत्संग करने से ये बातें दिखने लगती है। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि भाई समय हमारा जा रहा है, मानव जीवन का ये समय, ये उम्र, ये काल समय बीत रहा है और ये जितनी पूंजी हमारे पास है उतना दिन हम जी सकते हैं और जी नहीं सकते। धन संपत्ति विभव जमीन जायदाद आदि को आपने धन माना है, परंतु ये हमारे जीवन का आधार नहीं है। उम्र खत्म होने पर लाखों करोड़ों अरबों रुपये रहने पर भी मरना पड़ेगा और जीवन बाकी है। एक कौड़ी पास में न हो, खाने को नहीं, पीने को नहीं, रहने को जगह नहीं, पर उम्र बाकी है तो कोई ना कोई ढंग बैठ जाएगा, जी जाएंगे। तो ये दो चीज है, एक हमारी उम्र है, एक धन संपत्ति है। तो उम्र के समान धन संपत्ति नहीं है, ये सुबह मैंने बताया था। अब एक बात और बताता हूं, आप ध्यान दें। एक हमारी इच्छा होती है, कामना होती है, और एक हमारी आवश्यकता होती है। ये दो चीज है। जैसे दृष्टांत के लिए ये शरीर है, इसमें भूख लगती है, ये इच्छा नहीं है, ये कामना नहीं है, ये वासना नहीं है, ये त्याज्य नहीं है। अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, वस चाहिए, खटाई चाहिए, मिठाई चाहिए, सरकाई चाहिए, ये चाहिए, ये है इच्छा, ये है कामना, इसका अंत नहीं आएगा। और भूख है वो रहेगी नहीं, खाने पर मिट जाएगी, पर इच्छा मिटेगी नहीं। गांधी जी ने लिखा है कि मैंने ऐसे आदमी देखे हैं, खाते खाते पेट भर जाता है तो उल्टी करके निकाल लेते हैं, फिर खाते हैं, जो खा नहीं सकते क्या करें। तो खाने की इच्छा तो जीभ का चुटोर पड़ा है, वो मिटता नहीं है, पेट भर जाता है। तो पेट भरने के लिए तो ये तो आवश्यकता, और वो है इच्छा कामना। जैसे सड़क पर हमारी गाड़ी चलती है और कोई खड्डा पड़ जाएगा तो वो जाते हुए ही वो चक्का लचकेगा और उसको भर दो, चाहे सीमेंट से भर दो, अलकतरा से भर दो, मिट्टी कंकर से भर दो, ठीक गाड़ी चलेगी, तो वो इच्छा नहीं है कि सड़क के कोई इच्छा है, वो कमी है, उसकी आवश्यकता है। ऐसी भूख लगती है, वो खाद्य पदार्थ की कमी है, वो देने से तृप्ति हो जाएगी। परंतु इच्छा होगी, तरह तरह की कामना होगी, इसका अंत नहीं होगा। ये दो चीज है, ये मेरे कहने का मतलब। जैसे एक धन संपत्ति आपकी पूंजी है, एक आपके जीवन की पूंजी है, जो उम्र है वो है। ये दो चीज अलग अलग है। ऐसे भूख है वो अलग चीज है, और इच्छा कामना अलग चीज है। इच्छा कामना मिटने वाली होती है, भूख मिटने वाली नहीं होती, वो तो पूर्ति होती है। ऐसे ही अब ध्यान देना, हमारे जो संसार की इच्छा है ये कामना है, और परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है ये कामना नहीं है। ये है स्वयं की आवश्यकता, ये कभी वो पूरी होगी, कभी मिटेगी नहीं, और इच्छा है कभी पूरी होगी ही नहीं। चाहे अनंत ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए तो भी कामना पूरी नहीं होगी, वो है दुखदायी। और आवश्यकता है वो तो आनंद देने वाली है, वो जागृत हो जाए तो कामनाएं सब मिट जाती है, वो पूरी हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, इसका नाम कामना नहीं है, ये तो आवश्यकता है। जैसे भूख लगी तो भूख में चाहे दाल भात ले लो, रोटी साग ले लो, चाहे हलवा पूरी ले लो, कोई ना कोई चीज कोरा साग खा करके पेट भर दो, भर जाए फिर काम देगा शरीर। तो उतना भार बोझा इसमें पहुंच जाए, ये इसकी आवश्यकता है। जैसे शरीर की भूख है वो आवश्यकता है, ऐसे इस आत्मा की स्वयं की भूख है परमात्मा की। ये परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर ये मिट जाएगी, फिर कभी भूख लगेगी नहीं, ये उसकी आवश्यकता है। और धन संपत्ति वैभव मान बढ़ाई भोग, इनकी जो चाहना है इसका नाम इच्छा है, इसका नाम कामना है। ये कितने ही मिल जाए तो पूरी होगी नहीं, ये दो बातें हैं। मेरे सामने कोई आदमी आता है, वो बात करता है, तो उस बात करने से मैं सीखता हूं, मेरे को ज्ञान बढ़ता है। मेरे से भाई ने कहा कि इच्छा है ना, संसार इच्छा छोड़ी, मुक्ति की इच्छा है, ये मित्र इच्छा ही है, काम नहीं है। तो मैंने कहा भैया तुमने सत्संग किया नहीं, इस विषय में तुमने प्रवेश किया नहीं, इस बात से ऐसा बोलते हो जैसे कोई सन्निपात में आदमी बोलता हो, बावर भूत विवश मतवारे। बावला आदमी हो, भूत लग जाए और मदिरा आदि पी दे, ते नहीं बोले ही भसन संभारे। वे बोलते हुए संभल कर नहीं बोलते, मन में ऐसे ही बोल देते हैं। इस तरह से सत्संग जो किए हुए नहीं है वे इन बातों को नहीं समझ सकते। सत्संग करने वालों को देखा है मैंने, 10-15-20-25-30 वर्षों तक सत्संग किया है, परंतु इन दोनों को अलग अलग बतावे तो हर एक आदमी बता नहीं सकता। और नहीं तो आज आप समझ सकते हो, आपने ख्याल किया है कि नहीं इसका तो हमें पता नहीं। आपकी दृष्टि में ध्यान में ये बात आई है कि नहीं इसका हमें पता नहीं। परंतु चीज ये दो है, जो आपके समझ में नहीं आया हो तो मेरे से पूछे, अभी पूछ ले चाहे पीछे पूछ लेना, भाई दो चीज क्या, एक भूख होती है एक कामना होती है। भूख होती है वो वस्तु की आवश्यकता होती है, और कामना आवश्यक नहीं होती है, वो तो इच्छा होती है। तन की भूख इतनी बड़ी आध शेर व शेर, मन की भूख इतनी बड़ी गिट जात गिरिमेर। सुमेरु पर्वत कोई गिट जाता है, चबाना ही चबाता ही नहीं, ये मन की भूख है। तो मन की ये इच्छा होती है, कामना होती है। जब कभी हो कामना निवृत्त होगी, और जब कभी हो आवश्यकता पूर्ति होगी। तो परमात्म तत्व की भीतर जो इच्छा है ये कामना नहीं है, ये पूरी होने वाली है। और संसार के भोगों की और संग्रह की जो इच्छा है ये पूरी कभी होने वाली नहीं है। इसमें तो हो कमाओ और जितना मिल जाए उसमें संतोष करो, भूख में संतोष कैसे करें, भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, कहते संतोष करो, संतोष करे, प्यास लगी है, जलन हो रही बीचर, जल पियो शांत हो जाएगी। तो संतोष इच्छा के लिए किया जाता है, आवश्यकता के लिए नहीं। ये दो चीज है। वो क्यों है कि परमात्मा का अंश जीव है और संसार का अंश शरीर है। मेरी बात ध्यान देकर सुने आप, जैसे पढ़ाई होती है इस तरह से मेरी बात है। ये शरीर की भूख तो क्या होगी कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बनी हुई सांसारिक पदार्थ है, उसकी इच्छा होगी। और स्वयं आपकी भूख होगी परमात्मा की, परमात्मा के अंश आप हो, परमात्मा के मिलने से वो मिट जाएगी। और संसार है, उसका अंश शरीर है, तो उसकी भूख लगेगी, फिर खा लिया, फिर भूख लगी, फिर खा लिया, फिर भूख लग गई। पर परमात्मा तत्व की ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा प्राप्ति होगी फिर भूख लग गई, ये नहीं होगा। वो पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण मदक पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मदक चले पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण में वावशिष्य थे, वो सदैव पूर्ण होने वाली होती। मेरी ऐसी इच्छा है आप लोग इस विषय को समझ लें, अगर आप उचित समझे तो समझें, और समझ में नहीं आए हो तो मेरे से पूछें, इस बातों को जान लें। बड़ी विचित्र बात है, मामूली तमाशा नहीं है, बड़ी गहरी बात है। आपका ध्यान खींचने के लिए मैं कहता हूं, मैंने व्याख्यान देना सीख लिया, पर इस बात का हमें ज्ञान नहीं हुआ था। आवश्यकता और इच्छा ये दो चीज है, इसका ज्ञान हमें हुआ नहीं, व्याख्यान दे देता हूं। ऐसे मेरा ये अनुभव है कि बड़े बड़े विद्वान भी इन दोनों का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ये मैंने देखा, इस वास्ते आप लोगों के सामने ये बात रखी है। तो आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा की निवृत्ति होती है, उसकी पूर्ति नहीं होती। और ये आवश्यकता है वो विचार के द्वारा निवृत्त नहीं होती। चुप हो जाओ भले ही, पर भूख मिट थोड़ी जाएगी, प्यास मिट थोड़ी जाएगी, जाड़ा लगता है कपड़ा न ओढ़ने से वो जाड़ा दूर थोड़ी हो जाएगा, ये उसकी आवश्यकता है। जैसे शरीर की बताई, इसी तरह से खुद की आवश्यकता परमात्मा की है, वो प्राप्ति न करो और इच्छा कितनी ही पूर्ति करो, ये पूरी होने की है नहीं। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रकृत चेतनाम, एक तो भोग भोगना और एक रुपयों का संग्रह करना, ये दो इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं, किसी की होने वाली नहीं है, असंभव बात है। जो 10, 20, 50 भजे शत हो या हजारों तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भजे पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी, ये भूख भगने वाली नहीं है। और परमात्मा की तरफ चलोगे तो इनसे वैराग्य हो जाएगा, ये तो रहेगी नहीं, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, वो भूख मिट जाएगी सदा के लिए, फिर संसार की परमात्मा कोई इच्छा नहीं रहेगी, उसी के लिए ये मानव शरीर मिला है। आप हम भाई बहन जितने गए, ये शरीर जो मानव का मिला है उसके लिए मिला है। अब एक दूसरी बात कहता हूं, मानव शरीर की जो महिमा है वो महिमा इस शरीर की नहीं है, दो पैर हो और खड़ा रहे, काला माथा हो और हाथ दो हो ऐसा लंबा हो, इसकी महिमा नहीं है। वो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, इस शरीर को अधम बताया है, सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जात जही, सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है। तो दुर्लभ बताया, इसको बताया पांच भूतों का पुतला है, अधम शरीर है, और वो उत्तम शरीर है। तो वो क्या है, ये दो भेद भी आप समझ लें। शरीर है ये इसकी महिमा नहीं, इसमें जो विवेक शक्ति है सत असत को, नित्य अनित्य को, सार असार को, वास्तव में हानि लाभ को, अपने हित और अहित को जो ठीक पहचान सके, ऐसे पहचानने की जो ताकत है उस विवेक का नाम मानव है। गाय इतनी पवित्र है कि जिसका गोबर और गोमूत्र भी पवित्र है। गोबर में लक्ष्मी का निवास है और गोमूत्र में साक्षात गंगा जी निवास करती है। अशुद्ध हो तो गोबर गोमर गोमूत्र लाकर छिड़क दो, शुद्धि हो जाए। सुआ सूतक दूर करना हो तो गोबर का चौका लगा दो, गोमूत्र लाकर छिड़क दो, शुद्ध हो जाएगा। जिसके गोमूत्र गोबर भी शुद्ध है उस गाय को भी आप समझा नहीं सकते भाई कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो। ये शक्ति मानव में है। तो मनुष्य में वो शक्ति होने पर अगर उस शक्ति का उपयोग नहीं करता, इधर ध्यान नहीं देता, तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं है, पशु ही है। केवल भोग भोगना, संग्रह करना, रुपया कमाना और ऐश आरामी करना, मकान बनाने का सुख भोगना, ये पशुओं का है, ये मनुष्यता नहीं है। हमारे एक मित्र कश्मीर गए थे, वो कहते थे कश्मीर में, कई वर्षों पहले की बात पुरानी, अब उनका शरीर नहीं है, वहां कश्मीर में गया तो वहां फल आदि बहुत होते हैं। एक कुत्ता पाला हुआ था, उस समय में आठ आना की मलाई रोजिना खाता था वो, और गद्दों पर बैठता था, ऊपर पंखे चलते थे और नौकर उसको बढ़िया साबुन से नहलाते थे। उतना आराम मनुष्य को हरेक को नहीं मिलता जितना कुत्ते को मिला। कलकत्ता में एक कुत्ता था, तीन कमरा पास पास में और तीनों के नीचे तख्ता, तख्ते के ऊपर बड़ा बढ़िया गद्दा बिछाया हुआ और तीनों ही ऊपर तीनों में पंखा चले, मर्जी हो यहाँ बैठे वहां बैठे वहां बैठे। और उस कुत्ते को बंबई भेजा गया तो नई फैट गाड़ी लेकर के उसमें भेजा गया। इतना आराम कितने मनुष्यों को मिलता है आप जरा। तो आराम के लिए जो आप पड़े हो, लोक संग्रह के लिए पड़े हो, ये जरा सोचो, ये मनुष्यता नहीं है। ये तो भाग्यवान तो कुत्ते को मिल जाएगा, गधे को मिल जाएगा, पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगा कुत्तों गधों को। मनुष्य शरीर में आकर परमात्म तत्व की प्राप्ति अगर नहीं करी तो सूकर कूकर ऊंट खर बड़ पशु में चार, तुलसी हरि की भगत बिना ऐसे ही नर नार। नर हो चाहे नारी हो, बिना भक्ति किए हुए सुअर है, कुत्ता है, गधा है, ऐसा ऊंट है, सूकर कूकर ऊंट खर ऐसे दरनार है। तो सज्जनों ये विचार आपके आना चाहिए, इस बात की तरफ आप ख्याल करें, न करें करें आप स्वतंत्र हैं, पर तो मनुष्यता है इस बातों के समझने की, और सत्संग के द्वारा ये प्रकाश मिलता है, सत्शास्त्रों के द्वारा ये प्रकाश मिलता है, भगवान के भजन करने से ऐसा प्रकाश उसके हृदय में उद्बुद्ध होता है, जागृत होता है। नहीं तो धन कितना ही आपके पास आ जाए नहीं होता, धन ही नहीं, आप वेदों के विद्वान हो जाओ, शास्त्रों के पंडित बन जाओ, पर इस तरफ ध्यान नहीं दोगे तो शास्त्रों के पंडित होने पर भी ये बात समझ में नहीं आएगी, ऐसी विलक्षण बात है। और समझो तो अभी मैंने कहा अभी आप समझ लो, अभी समझ में आ गए, कोई पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं। तो मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अब तीसरी बात बताऊं, ध्यान देकर आप लोग सुनें। मनुष्य प्राप्त कर सकता है तो केवल परमात्मा को ही प्राप्त कर सकता है और कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। और कुछ नहीं कर सकता, मैंने पीछे एक दिन सुनाया था कि ब्रह्म लोक तक आप जावे भोग भोगे, स्वर्ग में जावे भोग भोगे, यहाँ पर आप धन लेकर खूब भोग भोगे, बड़ा आपका नाम हो जाए तो क्या हुआ, खोटी हुए, कोरे खोटी हुए। जैसे महरे में आता है वो कोक लिया, ब्राह्मण गया पत्री लेकर के, तो मानदार से यूं बोल रहा, न तो देना आयोगे, न तो देना आया, ये आया है तो निमंत्रण देने को आया। और बात से पता लगा कि ये तो महरे वाला है, आगे उसे आप माल लेकर पहुंचो अंजा। तब वे बोले, अगर गांव रहे आटे सु ब्राह्मण कर ली ना खोटी, हम तो सर नेता देने आया है, गांव में आटो लाड़ जाते खोटी कर दिया। जो आपने स्वर्ग प्राप्त कर लिया या भोग प्राप्त कर लिया तो कोरा खोटी हुआ, वो मिला कुछ नहीं है महाराज, आपके जचे चाहे न जचे, न जचे भी भाई मेरे से मिले और मेरे से बातचीत करे, मिला क्या, परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह गए, खोटी हो गई, समय बर्बाद हो गया। अगर आप चेत करते तो परमात्मा की प्राप्ति कर देते, आपके धोखा हो गया। जैसे विश्वासघात होता है तो पीछे पश्चाताप करना करता है कि भाई तो विश्वासघात हो गई, ऐसे सज्जनों ये भोगों के भोगने में और संग्रह में आपने समय लगा दिया, कोरा इसमें भजन नहीं किया तो आपके विश्वासघात हुआ है। मिला मिला आप कहते हो कि धन मिल गया, मान मिल गया, बड़ाई मिल गई, मिला मिलाया कुछ नहीं है। आज मर जाओ फूंक निकलते ही कुछ नहीं आपके पास, तो मिला कहाँ, मिली हुई चीज वो मानी जाए जो जीते हुए भी साथ में रहे और मरने के बाद भी आप साथ में रहे, वो तो चीज मिली है। और यहाँ दी गए शब्द भाग बढ़िया बढ़िया दी गए, जैसे सपने सु जीव जगे, बहुत धन मान मिला, धन सपने में, पर आंख खुली थी एक कौड़ी नहीं, सपने की 100 मोहर से कौड़ी सरे न काम। कोई कहते है कि सपने वाली 100 मोहर देता हूं, मेरे को बिना लगाए एक खाली पान दे दीजिए, दे देगा, 100 मोहर देता हूं, कौन सी सपने वाली कोई देगा, कौड़ी एक दाम नहीं हुई। ऐसे यहां दिखता हुआ सब जो संपत्ति धन वैभव मकान रुपये आंख मिसते ही कुछ नहीं, जैसे सपने से जागते ही सपने की संपत्ति कुछ नहीं, ऐसे इन आंखों के मिसते की यहाँ की संपत्ति कुछ नहीं, उसमें आपने समय लगाया क्या फायदा किया। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता न कोई, धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन होए। भगवान का नाम रूपी धन ले लिया आपने तो साथ चलेगा, वो यहाँ नहीं रहेगा, या धन कमाओ राज का टैक्स लग जाएगा, चोर आ जाके चोरी कर जाएगा, ठग आपकी ठगाई कर देगा, और आपके पास है तो भाई भाई अलग होंगे तो पाती हो जाएगी, और भजन की पाती होगी क्या, एक भाई ने भजन किया या नहीं किया, वो जो जिसने किया उसका ही है, वो साथ में लेकर धन को चलते तो बाहर होता है, भगवान के भजन का भार बोझ नहीं होता, और मरने के बाद भी बड़ा भारी काम आता है। अच्छे अच्छे संत महात्मा यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं तो ब्रह्मादिक लोकों में जाते हैं, वे भी आदर करते हैं कि ये भगवान के भक्त हैं, भजन करके आए हैं, उत्थान देते हैं, आदर करते हैं, भजन भी पूंजी के कारण से, और रुपया ही रुपया कमा रहे हो तो आप जरा सोचो कहाँ तक बुद्धिमानी है। मेरे कहने का तात्पर्य उल्टा मत लेना कि कमाना छोड़ दे हम, ये छोड़ोगे तो नहीं, मैं फिर भी कह देता हूं, मैं आपसे छूटेगा नहीं, पर छोड़ने का मैं कहता ही नहीं। गृहस्थ समझ जाते हो न्याय युग, तो पैसा कमाओ, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, मैं मना नहीं करता हूं, परंतु पैसे के भरोसे भगवान का भजन छोड़ दो ये गलती करते हो, इस गलती का सुधार करो। और नहीं कहता हूँ आप पैसे मत कमाओ, मकान मत बनाओ, आराम से मत रहो, स्त्री बच्चों का पालन मत करो, ये नहीं कहता हूँ। करो पर इसके भरोसे भजन को छोड़ दिया, भगवान की तरफ इस्तीफा दे दिया, ये मनुष्यता नहीं है। इसमें तो पशु पक्षी भी लगे हैं, कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, दूसरे बच्चों को मार देती। सूर जी के 11 बालक में 11 बच्चा एक सूर जी के एक साथ में पालन करती है। हमारी ये बहना एक दो हो जाए साथ में, ज्यादा बच्चे नहीं होते साथ। तो बच्चों से अगर बड़ाई हो तो सूर जी की बहुत ज्यादा बड़ाई होनी चाहिए, इनसे बड़ाई नहीं है। इसका आशय ये नहीं कि आप गृहस्थ आश्रम में मत रहो, ये आशय नहीं। पर ऐसे भूल कैसे गए हो, मरने के बाद चाहिएगा कि नहीं? एक दो दिन के लिए भी कहीं जाते हो तो साथ में पॉकेट में पैसे ले जाते हो, और वहां पूछते हो कोई सवारी मिलती है कि नहीं, वहां कोई मकान मिलेगा कि नहीं, वहां वस्तुएं मिलती है कि नहीं, तो वहां चाहिएगा। आपसे मैं पूछूंगा, शरीर छोड़कर तो जाना पड़ेगा ही, ये तो यहाँ रह नहीं सकते, रिवाज नहीं है यहाँ रहने की। उस दिन के लिए आपने क्या प्रबंध किया है, साथ में आपने क्या लिया है? और नहीं लिया है तो उसका दुख आपको भोगना पड़ेगा दूसरे को? फिर आप समझदार क्या हो? समझदारी वही है कि यह मरने के बाद फिर रोना ना पड़े। नहीं तो रामायण में आया है, सो परत दुख पाव ही सिर धुनि धुनि पसीता है। जो यह अपना उद्धार नहीं करता वो सिर धुनि धुनि पसता है, पसता कर तो रोना पड़ता है। अरे काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, क्या करे, कलयुग आ गया, लोग ऐसे ही हो गए, राज के कानून ऐसे ही हो गए, झूठ कपट का व्यवहार क्या करें, बिल्कुल झूठा दोष है। कलयुग आया तो बहुत बढ़िया काम आया, कलयुग सब युग आन नहीं, इसके समान दूसरे युग सतयुग त्रेता द्वापर कोई भी नहीं कलयुग के समान। कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए ऐसा मौका सत्संग कलयुग का है। उस कलयुग को दोष देना ये वास्तव में दोष अपना है। आप वैश्य भाई हो, व्यापारी हो, आपसे मैं पूछूं कि वस्तु बहुत सस्ती आवे और महंगी बिके तो धनवान हो जाते हो नहीं, और भाव गिर जाता है तो लाखों रुपया होता है तो लाखों का घाटा हो जाता है, और भाव तेज होता तो माल माला माल हो जाते हो। कल्पना करो एक आदमी ने रुपये मन 1.5 रुपये मन 2 रुपये मन में अनाज खरीदा, अब 20 रुपये 25 रुपये 40 रुपये मन हो गया तो लोग कहते हैं बाजार बड़ा खराब हुआ, रोजना चाहिए खरीद लावे लावे कहां से, बड़ा खराब हुआ। पर 2-4 हजार मन जिसके पास में पड़ा है, 1.5 रुपये मन में लिया हुआ और 30-35-40 रुपये मन हो गया, वो भी कहेगा बाजार खराब हो गया? आज जा सोचो, मेरी बात समझ में आती है ना? क्या वो कहेगा कि बाजार खराब हुआ? वो तो कहते हैं मौज होगी। ऐसे कलयुग में भगवान के नाम के लेने में जितना सतयुग में लगता था उतना ही आज समय लगता, राम 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 राम, सस्ता मिलता है इतना, और इसका दाम उठेगा कलयुग के हिसाब से, इसके नाम की इतनी कीमत अधिक होगी, तो कितने नफे की बात है ये। सस्ता माल आता है और इसमें कितनी विलक्षण बात है, कलयुग का समय है। उस कलयुग की निंदा करना, समय खराब आया है, झूठ कपट चलता है, तो आप सच्चाई से व्यापार करोगे तो क्या भगवान पर असर नहीं पड़ेगा? कितना विचित्र बात है, कैसा सुंदर अवसर मिला है। ऐसे अवसरों कहते हैं कलयुग आ गया। अरे कलयुग आ गया, खाने को अन्न नहीं है, उनके लिए महंगी हो गई तो चिंता होती है, 20-30-40 गुना अधिक नफा हो गया। ऐसे इस जमाने में अगर सच्चे हृदय से भजन में लग जाए और सच्चाई का पालन करे, नीति का पालन करे, तो कल्याण बहुत जल्दी हो जाए। उस कलयुग को दोष देना बेसमझिए खुद की और दोष देते कलयुग को। काल ही कर्म ही, कर्म भी बड़े भागी मानुष तनु पावा, मनुष्य शरीर मिला है, फिर नरकों में जाओ कि हमारा भाग्य ऐसा ही है, भाग्य मामूली नहीं है। और भगवान की भी बड़ी विशेष कृपा, जो कर्म के अनुसार जूनी मिलती है वो मनुष्य शरीर कब मिलेगा पता नहीं, पर जो परमात्मा कृपा करके मानव शरीर दे देते हैं, तो काल ही कर्म ही इसमें ही मिथ्या दोष लगा, इसको दोष लगाना मिथ्या है। मौका मिला है बड़ा सुंदर कलयुग का मौका, मनुष्य का शरीर, गीता रामायण और भगवान का नाम, उसकी हमें पहचान हो गई। पता नहीं होता है क्या काम करना चाहिए क्या, इसका पता नहीं है, बिना समझे समय बर्बाद हो जाता है। अगर वो पता लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है, कैसा सुंदर समय है, कैसी भगवान की कृपा है, कैसा अच्छा भाग्य है, बड़े भाग्य पाए ये सत्संग। जब द्रवे दीन दयालु राघव सत्संगत साधु संगति पाई है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, विभीषण जी कहते हैं अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो अच्छी बातें मिलती है भगवान की कृपा से, वैसी अपने को बातें मिले और फिर भी अपना उद्धार न करें और दोष लगावे काल कर्म और ईश्वर को, ये गलती। अपने सावधान होकर के और भजन में लग जाए, ये प्रकाश है सत्संग के द्वारा, ऐसा प्रकाश मिलता है। ये कोई नई बात नहीं है, नया काम नहीं है, ही हमारे पास में, परंतु अंधेरे में जैसे दिखता नहीं ऐसे दिखता नहीं। मनुष्य शरीर के द्वारा आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आपके बैंक में हम धनी हो जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा, और पूछे कितना दिन, जितने दिन उसमें राजी रहे उतने दिन आपके मुफ्त में ठगाई में चले गए। अगर आप होश में आते तो ऐसे धोखे में आप नहीं जाते। बड़े बड़े संत महात्मा हुए वृत और त्यागी, क्या वो बेअकल थे जिन्होंने त्याग करके भजन में लग गए हैं? क्या उनमें समझ नहीं थी? सार चीज में लगे सार, और असार में लगे वैसा कर रहे हैं। एक संत थे भिक्षा के लिए गए तो सेठ आया, नमस्कार किया तो संत ने भी नमस्कार किया, वो पैरों पड़ता है तो संत भी उसे पैरों पड़ते। सेठ बोला कि महाराज आप पैरों कैसे पड़ते हैं, कि तुम कैसे पड़ते हो भाई, कहते आप महाराज त्यागी हो, इस वास्ते आपकी महिमा है। ऐसा त्याग के कारण महिमा है, तो त्यागी किस गए है? जमीन जायदाद मकान स्त्री पुत्र धन, इसका आपने त्याग किया है। तो त्याग में देखो तुम बड़े हो कि तुम स्त्री पुत्र धन के लिए भगवान का त्याग किया है, तो बड़ी चीज भगवान हुआ कि रुपया? भगवान का तुमने त्याग किया ताकि तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हुआ? अरे बड़ा त्याग करे वो बड़ा त्याग, छोटा त्याग करे छोटा त्याग। तुम संसार के भरोसे भगवान को अस्तित्व देकर बैठ गए तो कितने तुम्हें त्यागी हो? नमस्कार तो तुम्हारे को करना चाहिए, तुम बड़े हो। तो ऐसे त्यागी बने बैठे हो, जरा सोचो तो सही। एक पलक मारते ही प्राण चले जाएंगे, उस समय तुम्हारा धन संपत्ति वैभव क्या काम आएगा? और भगवान का भजन किया तो काम आएगा, लोगों पर भी असर पड़ेगा। संत महात्मा थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए, उनकी रामायण को लेकर के कितनों को शांति मिलती है, कितनों की जीविका चलती है, कितने सुधर जाते हैं आदमी उन संत की वाणी से। इतना लखपति करोड़पति अरबपति भी इतना उपकार कर सकता है क्या दुनिया का? नहीं कर सकता। तो भगवत भजन करके आप दुनिया का कितना भला कर सकते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, कितनी विलक्षण बात है। और धन कमाने में कोई स्वाधीन नहीं है, सब लखपति नहीं बनते हैं, पर लाख नाम रोजाना दे सकते आप। साधारण साधारण भाई बहन अगर विचार कर रहे लाख लाख नाम लेना है तो लाख नाम दे सकते रोजाना, और लाख रुपया उम्र भर में इकट्ठा हरे के लिए देखने को नहीं मिलता। इतना इसमें स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो वो तो करते ही नहीं, और करते हो उसमें स्वतंत्र नहीं। धन का संग्रह करते हो साथ जाएगा नहीं, और भजन पीछे रहेगा नहीं उसका संग्रह करते नहीं, तो होश कब आएगा, चेत कब होगा? जरा ध्यान को अरे ख्याल करो, होश कब आएगा बताओ। बच्चे छोटे होते हैं तो वे कहते हैं बड़े हो गए तो ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। माताएं भी रहती है कि हमारा लाला बड़ा हो जाएगा तो ठीक करेगा। तो आप कब बड़े होंगे जो सोचोगे अपने उद्धार की बात? किस दिन के लिए रखी है? बाकी बाल सफेद होने लगे हैं, ये बुलावा आ गया है जमराज का। कृतांत से दूती जरा कर्ण मूले समागत वक्ति लोका सुनुद्धम। महाराज दशरथ जी ने दर्पण दिया और मुकुट साफ किया, श्रवण समेत भये सित केशा, कान के पास में सफेद बाल हो गया। तो दशरथ जी ने कहा भाई ये वृद्धावस्था कान में आकर के ये चेत करो, अब बुलाया है, मौत का संदेश आ गया है, मरना पड़ेगा। जैसे किसी के ब्याह होता है तो आपके देश की चाल है चावल देते, पीला चावल देते, ये चावल देते, हमारा लड़के ब्याह में आप आना ये चावल देते, ये जमराज के चावल आ गए तो बुलाया है। कि तो पीला होते सफेद, ब्याह का पीला होता है मौत का सफेद ही होता है, ये चावल आ गए, बुलावा आ गया, जाना पड़ेगा। अब जितने दिन जी गए इतना दिन जीना आगे मुश्किल है, और फिर भी आप चेतते नहीं। छोरे बेचारे काम करने को तैयार, कई घरों में ऐसी बात है मैंने सुनी है, भाई बापू जी तुम तो भजन करो, आप टांग अड़ाते बीच में बेचारा काम में बाधा होती, छोरे उखता जाते हैं, क्यों आप ऐसा करो? ये माइयां बूढ़ी बूढ़ी बहुओं को तंग कर देती है, वे काम कर रहे, हाँ बेटा तुम करो, बहुत अच्छी बात, उनको कर्ण नहीं दे रहे, आप बीच में टांग अड़ाती रहे काम बिगड़ता है, अगर वही नाराज होती है अगर आपके आफत होती है, तो भजन का मौका मिला अच्छी बात, हाँ बेटा ये लो चाबी ये काम करो। कहते वो बिगाड़ देंगे, आज मर जाओ तो कौन सुधारेगा, तो एक दो साल पहले मर जाओ भजन तो हो जाए, मरोगे अंत में तो पहले मर करके उनको दे दो, लो बेटा वो काम करो, कि महाराज भी काम बिगाड़ते हैं तो उनको सुधारने की बात कहो, तंग क्यों करते हो, मालिक तो बढ़ेगी, जिस दिन बहू आ जाए उस दिन समझो मालकिन आ गई, घर की मालकिन आ गई, अब थोड़ा काम इनके अगाड़ी अपने कर दो, उतने दिन अपने रोटी खाओ, इस बात से काम करो, मालकिन तो ये है, मान लो तो सुखी हो जाओगे। आपके भी छोरा बड़े हो जावे तो उनको काम धीरे धीरे समझा दो, अब करो भाई। अरे राज में नौकरी करते हैं भाई, रिटायर होते हैं तो आप गृहस्थ में रहते, रिटायर कब होंगे? असली काम जिसके लिए आना हुआ वो कब करोगे? ये सोचा है क्या? अंधाधुंध होकर हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा कर रहे हैं, लाज लग रही है पैसों की, नतीजा क्या होगा? पैसे कमाकर छोड़कर मरोगे? आप सोचते नहीं, इधर ध्यान नहीं देते। कलकत्ते में एक भाई से मैंने कहा कि तुम पैसा ही पैसा कमाते हो, आज बैठे भजन करो तो पीढ़ियां तक खावे जितनी रोटी आपके पास है, फिर भजन क्यों नहीं करते, क्यों कमाते हो? वो सज्जन आदमी था, उसने कहा स्वामी जी इसका हमारे पास जवाब नहीं है, क्या कमी है आपकी, भगवान की भजन में लग जाओ, अवसर आया बड़ा सुंदर अवसर है, परंतु क्या जाने पीतवा मोहमयी प्रमाद मदिनाम उन्मत्त भूतम जगत। जैसे मतवाला होता है दारू पिया हुआ, इस तरह से दारू पिए हुए चलते हैं, ख्याल नहीं करते हो मौत आ रही है नजीक, कब चेतोगे, कब भजन स्मरण करोगे, अपना उद्धार कब करोगे? जिस काम के लिए मानव शरीर मिला भाइयों बहनों, वो काम पहले करो, पीछे समय बच जाए तो और करेंगे। परमात्म तत्व की प्राप्ति पहले करना, उसमें सब स्वतंत्र हो, धन कमाने में स्वतंत्र नहीं हो। दूसरे की तिजोरी खुलेगी तब धन मिलेगा, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं है कि दूसरे की तिजोरी खुलेगी तब मिलेगा। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सबको ही खेल हुआ है, दावा नहीं, संत दास जीते सो ले जाए, चौड़े पड़ा हुआ है। मना मुख राम कही दे रहे, मन मुख राम को खुली चीज है, खुला माल पड़ा हुआ है। देश गत देरी करते हो, वो तो लेते नहीं, जो साथ में चलता है वो लेते नहीं, और लेते हैं वो साथ चलता नहीं, क्या दशा होगी जरा सोचो। आपके साथ में अच्छा काम चलेगा, भजन स्मरण करोगे, साथ में पूंजी चलेगी बड़ी बढ़िया, लोग भी याद करेंगे और सद्भाव से याद करेंगे। और दुष्टता का काम करोगे, मर जाने पर राजी हो जाएंगे लोग। एक पंडित से काशी से पढ़ करके आए, साधारण ब्राह्मण बेचारे पुस्तक लदी हुई आए, शहर में होकर निकले तो वर्षा आ गई, पास में छाता वाता था नहीं, तो वर्षा आई देख करके एक मकान के भीतर दरवाजा बड़ा पौल थी उसके भीतर खड़े रह गए। उस दरवाजे उसके ऊपर एक वेश्या रहती थी, तो एक राम नाम सत है अगर आदमी जा रहा था, मुर्दे को लिए जा रहे थे, तो उसने कहा छोरी जाओ ये स्वर्ग में गया कि नरक में, निकल करो। छोरी गई सब, पंडित जी ठहर गए कि वैसी ऐसी कैसी विद्या है, मरने वाले कैसे पता लगे। थोड़ी देर में आ गया तो ये तो नरक में गया, दूजा मुर्दा जा रहा था कि इनको देखो ये स्वर्ग में गया। पंडित जी ने कहा इतने वर्ष में काशी में रहा, कितनी पुस्तकें पढ़ी, अब ये पता नहीं लगता कि मरने वाला कहाँ गया, तो ये विद्या तो और ही हमें सीखनी है। ऊपर चले गए, देखा तो बेशा ने देखा कि मेरा ग्राहक तो है नहीं, अब पुस्तकें लेती हुई पंडित को पहचान लेती, बेशक महान होशियार होती है। कहा कैसे आए कि माता जी मैं पूछ, हमारे माता मेरे को मत कहो, मैं तो एक पेशा तू हमारे माँ बेची बहन ही हमारे, क्या क्या बात है कि तेने छोकरी से कहा उनका आग्रह तो स्वर्ग में गया कि नरकों में गया, ये क्या विद्या हम जानना चाहते। तो वाले छोरी आए, बता महाराज को बता तेने कैसे परीक्षा करी, ये नरक में गया ये स्वर्ग में गया, दोनों की परीक्षा कैसे करी। तो वो कहने लगी महाराज वो मुर्दा ले जा रहे थे तो मैंने ये पूछा कि ये कहाँ से आया है, किस मोहल्ले का है। उस मोहल्ले में पहुंची तो लोग रो रहे थे, इस घर का ये आदमी मर गया, पता लगा तो पड़ोसियों के घर से उनमें मैंने जा करके सुना कि वो आदमी मर गया कि निहाल हुआ, ये चुगली करता था, राज में फंसा देता था, चोरी करा देता था, लड़ाई करा देता था, झूठी झूठी गवाहियां देकर फंसा देता था, कुत्ता मर गया घर की ऐंठ गई, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो बड़ी आफत करता था। ऐसी बातें मैं कई घरों में सुनी, तो आकर कहते नरकों में गया। और दूसरा वो आया उसकी देखा भाई मुर्दा कहाँ का है, उसमें जाकर देखा आपस में लोग बातें करते थे घरों में कि वो आदमी मर गया, ओ राम 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 गजब हो गया। अपने तो मोहल्ले का एक प्रकाश था, कोई संत महात्मा आते सत्संग कराता, लोगों का कहीं कोई बीमार हो जाए तो रातों जगता, दवाई का प्रबंध करता, कोई किसी में आफत आ जाए तो उसकी सहायता करता, अपने तन से मन से धन से सब तरह से सहायता करता। वो चला गया, हमारे मोहल्ले में तो अंधेरा हो गया। एक ही ऐसा आदमी था, ऐसी लोग बातें कर रहे थे, तो मैंने आकर कहा ये स्वर्ग में गया। पंडित जी करे ये तो बातें पुस्तक में लिखी है, अच्छी करने करता है उसकी अच्छी गति होती है, अब बुरा काम करता है दुर्गति होती है, पर ये तो हमारे अकल में ही नहीं आई। तो भाई अच्छे पुरुष चले जाते हैं तो भी पीछे महिमा होती है, अरे बुरे मर जाते हैं तो लोग राजी होते कि न्याय हुआ आपत मिटी। तो अपने को कैसा बनना है, ऐसा बनना है क्या बदमिशी, ये आपके हाथ की बात है, इसमें भागी की बात नहीं है, इसमें योग्यता की बात नहीं है, इसमें केवल उपकार करने की आपकी दृष्टि है उसी बात में। बद्रीनारायण जा रहे हैं, पहले जमाने में पैदल जाते थे तो 10-15-20-50 आदमी जा रहे हैं, उसमें बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी, बद्रीनारायण पैदल जाते वाली बूढ़ी माताएं, हाथ में लाठी दी हुई, उसके सहारे से बद्रीनारायण हो जाती है माताएं, इनमें हिम्मत होती है और ठाकुर जी बल देते मदद करते। अब ये रात्रि में जा किसी चट्टी पर ठहरे, चट्टी पर ठहरे तो बेचारे बोझा लिए बैठे, नींद आ गई, थकी हुई बूढ़ी बड़ी माई है भाई, कमजोर आदमी, दो चार आदमी उसमें अच्छे, चट उठे चले गए, जल भर दिया, लकड़ी ले आए, रसोई बनाई, दाल बाटी बना करके और कहा जाओ क्या भोजन करो, नींद में सोती हुई उठा करके क्या भोजन पहुंच, अब थके और भूख लगी हुई, गर्म गर्म रोटी और दाल दे देते हैं, पा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। तो बद्रीनारायण तो सब जाते हैं, पर सेवा करने वालों को जो फल मिलता है सबको मिलेगा। तीर्थ यात्री भगवान बद्रीनारायण के जा रहे हैं, उनकी सेवा का मौका मिला है। तो जिनका स्वभाव ऐसा है दूसरों का हित करने का, वो जहां जाएंगे वहां हित करेंगे, वहां भी ये सेवा करेंगे, तो उनका कितना पुण्य बढ़ेगा। और ये आदत आप बढ़ा सकते हो, ऐसा आराम करने दी आदत कि हुक्म चलावे हमारा काम कोई करे, इसमें लाभ नहीं है, लाभ सेवा करने में, दूसरे को सुख पहुंचाने में है। तो सुख पहुंचाने की भगत आप ऐसा नहीं करते हो, आप अपना लाभ है, आराम मिले, सुख मिले, धन मेरे को मिले, ये लोभ तो कुत्ते का दम भी होता है, ये भी कोई मनुष्यता है। मनुष्यता तो क्या करने में, सेवा करने में, दूसरों के सुख पहुंचाने में है। वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो मनुष्य जन्म क्यों लिया। हमारी जगह कोई अच्छा प्राणी आता, वो अपना कल्याण कर लेता, तो सीट क्यों रोकी, आकर बैठ गए। अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थस जीवती, भगवान गीता में कहते हैं वो अघायु है, उसकी उम्र पाप है कोरा, मोघम से जीवती निरर्थक जीता है, मर जाए तो अच्छा है, गाली देते भगवान क्या काम का वो जीता रे, जीवत जैसे प्रेत, भजन बिना जीवत जैसे प्रेत, जीता ही प्रेत के समान है। तो भाइयों बहनों, अपना शरीर है बड़ा सुंदर मिला है, मौका मिला है, अच्छा मौका मिला है, भगवान का भजन करो, दुनिया की सेवा करो, अपने धन को तो धन से करो, शरीर तो शरीर से करो, नहीं तो मन से ही सबका भला चाहो, मन से भी भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, ऐसे भाव रखो, आपको पुण्य हो जाएगा। मुफ्त में कर सको जितना करके पुण्य कर लो, दे सको जितना देकर कर लो, और ये नहीं हो तो भाव शुद्ध बना लो, भाव शुद्ध बनाने से भी आपका अंतकरण निर्मल हो जाएगा, भगवान की बड़ी कृपा हो जाएगी, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। जितने जितने अच्छे महात्मा हुए हैं उनके भाव अच्छे हुए, उपकार करने के भाव हुए, उनसे भी संत बन गए हैं। हमारी बहना भी चाहे तो अब मीराबाई बन सकती है, पूरी बाई बन सकती है, कर्मा बाई बन सकती है, कर्मेती बाई बन सकती है, भाव से और क्या फर्क था बताओ। जैसे ये बहना ऐसी बहना मीराबाई आदि हुई, उनकी महिमा क्यों है, क्योंकि भगवान में लग गई, कर्मा बाई, कर्मेती बाई, पूरी बाई भगवान के भजन में लग गई, इस वास्ते उनकी इतनी महिमा है। महाराज वो पूरी जाटनी जोधपुर रियासत में हुई है, जाट पढ़ा, पढ़ाई कुछ नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं है, गोबर था बड़ी थे पड़ी, उसमें कहते ये मेरी है, दूसरी कहते मेरी है, तेरी नहीं है मेरी है। अब बोले क्या पैसा था उसके पास में कि पहचान क्या, किसको तोड़ कर देखो, कान के लगाओ, अगर नाम आता है राम 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 तब तो हमारी नहीं तेरी। पंढरपुर में एक चमार हुआ, चोखा मेला, उनका नाम था चोखा मेला। चमार से भगवान की भजन करते थे, बिठल 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 बिठल। मंगल बेरिया पास में एक गांव है, उसमें मकान बन रहा था, उस मकान में काम करने वाले ये थे। वो चमार भी ईंट चूना लगा था, पहुंचा था, काम करता था। अचानक वो गिर गया, मकान गिर गया, उसमें दब गया, उसे दबने पर मर गया। उसको ठीक करते करते 15-20 महीना लग गया। अब वो शरीर पहचानने में नहीं आता कि चोखा में लगा शरीर कौन सा है, कभी हड्डियां रह गई, कैसे बचे शरीर चेहरा दिखे तो पहचान दे, पहचान दे। नामदेव जी महाराज का महाराज चोखा मेला मर गया है, उसकी पहचान क्या हो, हड्डी उनकी पहचान सीधी है, हड्डियों में कान लगाओ, हड्डी में कान लगाओ, हड्डी में बिठल 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 आवाज, ये चोखा मेला हड्डी है। विचार को आप, कितनी विचित्र बात है, हड्डियों में असर पहुंच गया, उनकी हड्डियों में विलक्षणता। संत महात्मा जहां हो गए हैं उनकी दाह क्रिया की जाए, वहां जाकर बैठो भगवान मन लग जाएगा, और मसाना में जाकर बैठो हृदय हलचल हो जाएगी, शांति नहीं मिलेगी। मुर्दा मर गए तो उनकी हवा मांगी खराब है, मसान भूमि खराब है। ऐसा संतों को दाह क्रिया कर चलाया है, वहां जाकर बैठो तो शांति मिलेगी। क्या फर्क है, फर्क बड़ा भारी है। असली काम में लगा, मरने के बाद मुर्दे में फर्क होता है। मुर्दे की चीज दी जाए आपको, जूती है, कपड़ा है, कि ये वगैरह ना, हमने मुर्दे के नहीं रहेंगे। और संत चले गए, उनका कपड़ा भी मिल जाए छोटा, ये तो हम रखेंगे, हमारी पूजा में रखेंगे। क्या मुर्दे की चीज नहीं है, उनकी चीज पवित्र होती है। क्यों पवित्र होती है, ममता नहीं है, ममता जिसमें होती है वो चीज अपवित्र हो जाती है। तो उनकी चीज पवित्र होती है, उनके चरित्र पवित्र होते हैं, उनके दर्शन पवित्र होते हैं, उनकी यादगिरी पवित्र होती है। उनके याद करने से घर के घर पवित्र हो जाते हैं। भागवत में लिखा, कितनी विचित्र बात, क्यों हो जाते हैं, भगवान के भजन करने से। विदुर जी महाराज आए तीर्थ यात्रा करके, युद्ध के समय वे चले गए तीर्थ यात्रा में, आए पीछे, तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भगवत विधा भागवता, आपके जैसे भगवान के भक्त है, ये जो तीर्थों में जाते हैं आप जैसे भगत, वे तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाते हैं। पापी जाते हैं वो तीर्थ में पवित्र, अपने पाप छोड़ जाते हैं, पापों के वहां रहने से वे पापी बन जाते हैं तीर्थ। आप लोग जाकर स्नान करते हो, पाप नष्ट हो जाते हैं। एक साधु की बात सुनी मैंने, उदासीन साधु नमस्ते नमस्ते, ऐसा स्तोत्र है संस्कृत में, इतना बड़ा वो पुस्तक मैंने पढ़ा। उसकी बात सुनी है, एक दंडी स्वामी थे, संस्कृत के अच्छे बड़े विद्वान दंडी स्वामी, तो वे सभी खंडन करते साधुओं का, कि ये साधु है वैध नहीं है, अवैध है, इनको शास्त्र की आज्ञा नहीं है, साधु बनने का हुक्म नहीं है, ये खराब, ऐसी निंदा करी, निंदा करते करते महाराज कोर्ट भी किया है। अच्छे संत महात्मा तत्व की जीवन मुक्त अच्छे पुरुष, उनकी निंदा करने से कोर्ट भी किया है। अब घबराए, अब क्या करें, तो किसी ने कहा तुमने संतों की निंदा की है तो किसी संतों की सेवा करो, अच्छे जीवन मुक्त महात्मा पुरुष हो वहां जाओ। तुमने ब्राह्मण पने का अभिमान किया, दंडी स्वामी में ऊंचे दर्जे का हूं, विद्वान हूं, ऐसे अगर तिरस्कार किया उसका नतीजा है कोड़ने के, आप जाओ। तो पीलीभीत शहर, पीलीभीत वहां उसके पास में एक जगह संत रहते थे, लोगों ने कहा उन संतों पर जाओ, बड़े दयालु है, जीवन मुक्त महापुरुष कर्तव्य है। तो वहां पहुंचे तो महाराज पूछा, बंद थी तो बाहर ही ठहर गए। रात्रि में दोस्तियां आई, वे आई तो महाराज जहाँ स्नान करते थे थोड़ा सा जल इकट्ठा हुआ था, उस जल में उन्होंने थोड़ा अपना शरीर लगाया, ऐसे तो वो काला पड़ा ऑटोमेटिकल रूपवती हो गई। तो उस दंडी स्वामी ने पूछा कि तुम कौन हो, कैसे आई हो? क्या हम गंगा जी और जमुना जी हैं? दुनिया को पवित्र करने वाले गंगा जमुना है, तो यहाँ कैसे आई? कि दुनिया का पाप है हमारे लग गया, तो तुमने देखा ना कैसा स्वरूप था हमारा, और यहाँ का जल लगाते कितनी पवित्र हो गई। उन संतों की जल से, जल से चरणों के जल से हमारे पाप दूर हो गए, शुद्ध हो गए। ये युधिष्ठिर महाराज ने कहा बहुत विदा भागवत, आप जैसे भागवत है वे तीर्थ स्वरूप आप बने हुए, तीर्थ ही कुरुवंत तीर्थानि, अतीर्थ हो गए हैं उनको आप तीर्थ बनाते हो। किस से स्वांतस्थेन गदाव्रता, गदाधर भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान है, भगवान के ध्यान में मस्त रहते हो, इस वास्ते आप पवित्र हो, तीर्थों को पवित्र करने वाले, कारण के भगवान ही आ गए ना, आपके हृदय में भगवान विराजमान है, तो भगवान के याद करने से वे पवित्र हो जाने, तीर्थ पवित्र हो जाए, कितनी विलक्षण बात है। और इसमें सब स्वतंत्र, भगवान को याद करो कोई मना नहीं, जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुबर नाम में सबकाऊ का शीर, सबका शीर है, भगवान का नाम लेने में कौन मना कर सकता? बहन हो, भाई हो, कोई हो, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का क्या नहीं, भगवान के भजन की मना नहीं। वेदादि वेद पढ़ोगे आप, गायत्री पढ़ोगे तो उसमें क्या भाई तुम्हारा अधिकार, ये अलग अलग अधिकार, पर भगवान के चरणों में शरण जाने के लिए सब अधिकार, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन, यहूदी हो, पारसी हो, कोई काम हो, वे भी भगवान के चरणों में जा सकते हैं। देखो भाई माँ कहने का सबको अधिकार है, सपूत से सपूत भी माँ कह सकता है, अरे कपूत से कपूत भी माँ कह सकता है, नहीं कह सकते, कपूत हो गया, पूत तो है ही, माँ है मेरी। उस माँ के कहने में जितने लड़के सबके सब अधिकारी, ऐसे नहीं कह सपूत तो माँ कह सकते हैं, कपूत माँ नहीं कह सकते, ऐसा नहीं। माँ राजी नाराजी हो जो कुछ कह दे, धमका दे, चटका दे, कह दे, परंतु माँ कहने का अधिकारी सब है। ऐसे राम जी का नाम लेने के सब अधिकार है, राम जी मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, ऐसे करे वो सब अधिकार, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वह तुम्हें उर्गन दोस्त सखा, तुम्हें वह कितनी विचित्र बात, वो आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, इस संसार की कामना पूरी नहीं होगी, कामना मिट जाएगी, परवाह नहीं होगी। अर्ब खरब लो द्रव्य उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज, बताओ क्या काम आएगा? सूर्य अस्त नहीं होता इतना राज्य में, मरत मरत अरबो खरब द्रव्य मरे तब, और भजन किया भगवान का मरे तब साथ में जाए, उसके देखने से शांति मिलती है, संग करने से शांति मिलती है, बातों से शांति मिलती है, भजन भजन करे पाताल में प्रगट होता आकाश, दाबी दूबी नहीं दबाई ये कस्तूरी की बात, ये कस्तूरी की सुगंधी है, ये नष्ट नहीं होती, ये साथ जाती है। आप करके देख लो जिन लोगों ने भजन किया है उन लोगों की कितनी विचित्र अवस्था हुई, केशव कवि हुए, केशव कवि रामचंद्र का बनाई होगा, राम जी की लीला लिखी, उसको किसी ने पूछा कविता किसकी बढ़िया, तो उसने कहा केशव की बढ़िया, केशव कवि हमारी कविता बढ़िया है, कहते हैं गोस्वामी की वाणी ये कविता नहीं है, ये तो वेदों की ऋचाएं हैं, मंत्र है, हम कवि की बात बताते, कवि में कविता मेरी बढ़िया, गोस्वामी महाराज कवि नहीं है, ये संत है, इनकी वाणी बड़ी विचित्र है, इसमें बड़ी ताकत है जीव के उद्धार करने की, कवियों की कविता में सुंदरता है पर उद्धार करने की ताकत नहीं है, इनकी वाणी में विलक्षणता, तो संत लोग है उनकी वाणी विचित्र, उनके दर्शन विचित्र, उनका संग विचित्र, क्यों विचित्र है कि भगवान में लगे हैं, ये देखो इतना शोध करता है, ये बिजली का संबंध है, अरे वो तार काट दिया जाए तो इसमें ताकत रहेगी, कितना शब्द फैलाता है, कितनों को बचाता है। संबंध बिजली के साथ होने से वो संबंध टूट जाए तो ऐसे पड़ेगा कुछ नहीं। ऐसे भगवान का संबंध होने से संत महात्माओं में विचित्रता आ जाती है, और वो संबंध टूट जाए उधर से तो जयराम जी की काबा लूटी गोपीकार वही अर्जुन वही बाण विजय करी महाभारत में, पर भगवान पधारने के बाद में देख रहे लोगों लूट ली साथ में स्त्रियां तो उसको अर्जुन वही वही बाण कुछ नहीं। ये शक्ति भगवान की है, वो भगवान की शक्ति नहीं हो तो क्या करें। इसमें बिजली नहीं हो तो ताकत है इसमें यंत्र में, इतना शब्द प्रकट कर दे। ऐसे भगवान का संबंध जुड़ने पर उसमें विचित्रता आ जाती है, वो अपने घर की नहीं है भगवान की है। जहां अपनी मान लेता है वहां अभिमान आ जाता है, अभिमान है आसुरी संपत्ति निबंध आया आसुरी मता, और भगवान की मानता है तो मौज गुरु आनंद ही आनंद भगवान की सहायता से विलक्षणता हो जाती है। तो भगवान की तो है आवश्यकता, संसार की है कामना, कामना मिटाने की होती है, आवश्यकता पूरी करने की होती है। वो किसी के भाग्यशाली के जग जाए भीतर में तो आपके आपका कल्याण, दूसरों का कल्याण कर दो, इतनी शक्ति आप में आ जाए। ये हमारी बहनों है भाई है कोई कौन हो, साधारण स्थान दीख है कुछ काम की नहीं। ऐसी पूली भाई जाटनी थी, जोधपुर के दरबार ले गए उसको, महाराज खेतों में बैठी है, फौज की फौज आई, लो बेटा रोटी खाओ, रोटी फलियों का साग सबको दे दिया। दरबार ने देखा रही क्या बात है, जाटनी मांगो से ऊंचा ऊंचा गगरी पहनने से और सामने ऊपर लोही ओढ़ने, ग्रामीण खेती करने वाले राजा ले गए। कहते रानियों को उपदेश कौन करे, पुरुष तो जा नहीं सकते, उसको ले गए। अजा कहा कहते इनको कथा सत्संग सुनाओ। वे बैठे महाराज सिंहासनों पर, बढ़िया बढ़िया आसन है, पीढ़ा है उसके ऊपर श्रृंगार किए हुए बैठे रानी राज दरबार की। वो गई जाकर बोली, ध्यान देना अपनी भाषा में, गणो गंठो तन की शोभा, काया काचो भांडो, फूली थाने यूं कहे थे राम भजोए रांडो। सीधी बात, अरे रांडो राम राम करे बैठी गई समझे। ये काया गेड़ा उठा तन की शोभा, हीरार पन्नार पहन लिया, क्या होगा इसे, आज मर जाओ तो क्या काम आएगा। ये गेड़ा गाँटा तन की शोभा, अरे काया काचो भंडो, ओ काचो भंडो फूट जाएगा। पूरे सारे ये गए थे राम भजो ही रांडो, रीस नहीं करी किसने, सीधी सारी बात कह दी अपनी भाषा में, समझे। आदर करते हैं महाराज सब लोग, क्योंकि उसको लेना कुछ नहीं है, कुछ नहीं लेना है, अरे भगवान में मस्त है अपने, क्या गर्ज है उनके मन में, कह दी सीधी सारी बात। ऐसे हमारे देश में भगत हुए, साधारण जाति में हुए, ऊंची जाति में हुए, ब्राह्मणों में हुए, पंडितों में हुए, अपढ़ आदमियों में हुए, भगवान की तरफ लगे हुए विलक्षण हो गए, ऐसी विचित्रता। नारायण नारायण, अब पूछो, अब जो शंका है वो पूछो। मैंने इतनी बातें कही उसमें आपके समझ में नहीं आई वो पूछो, थोड़ी समझ में रही कहीं शंका रहेगी तो पूछो, क्यों भाई हमें जाना है, कल यहां से जाना है, ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, अगर दिया हुआ समय है तो आपके पूछना हो उसको पूछ लो। सुबह तो ये बताया था कि समय है ये बड़ा कीमती है मानव जीवन का, अभी बताया है कि आपकी इच्छा और आवश्यकता दो चीज है, उसमें आप अपना उद्धार कर सकते हैं, और मानव शरीर का लाभ इसी में है, और कुछ ले ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, धोखा हो जाएगा। देखो ये काम हो सकता है, और क्या कर लोगे, रुपया कमाने क्या होगा, छूट जाएगा, बड़े बड़े बढ़िया मकान बना दिया, ऐसा आराम किया तो क्या हो गया, ये तो छूट जाएगा सभी, भाग्य मिलेगा तो कुत्तों को और गधों को मिल जाता है, उसमें अपने समय बर्बाद कर देना, ये मनुष्यपना नहीं है। मनुष्यपना तो उसी में ही, तो भगवान के भजनों में जाता है।